सौंदर्य निरूपण पृष्ठ 41। सूफी काव्य में सौंदर्यांकन मुख्यतः रूप सौंदर्य पर केंद्रित है। यूसुफ चिलेखा इसका अपवाद नहीं है। इसमें मानवीय रूप चित्रण और प्रकृति सौंदर्य को विशेष महत्व दिया गया है। सौंदर्य के अन्य पहलू कवि की दृष्टि से प्रायः ओझल रहे हैं। मानवीय रूप सौंदर्य के अंतर्गत नारी रूप सौंदर्य एवं पुरुष रूप सौंदर्य दोनों ही पक्ष यूसुफ जुलेखा में प्राप्त होते हैं। सूफी काव्य परंपरा के अनुरूप यूसुफ जुलेखा में भी नारी रूप का अंकन प्रमुख है। कवि ने प्रत्येक सुंदर पदार्थ की व्यंजना जुलेखा के रूप सौंदर्य चित्रण में की है, जब वह प्रेम वियोग से अपरिचित रहती है। रूप सौंदर्य की दृष्टि से नक्षिक वर्णन का विशेष महत्व है। इसमें रचनाकार ने अपूर्व मनोयोग के साथ जुलेखा की मांग, वेणी, ललाट, भौं, नेत्र, कान, कपोल, अधर, चिपुक, गला, वक्ष, कुछ, नाभि, भुजा, पीठ, कमर, जांग, उंगली, नाखून, एड़ी आदि अंगों का वर्णन किया है। इसमें परंपरागत उपमानों का प्रयोग हुआ है, फिर भी यत्र तत्र कोमलता और दीप्ति के वर्णन में नई कल्पना का रंग उमड़ आया है। जुलेखा के अनुपम रूप की प्रसिद्धि सारे संसार में है। रूप अनूप जगत सब जानी, उसे देखकर किसी का बावला हो जाना स्वाभाविक है। बावर होए जो दर्शन हेरा, उसकी मांग का सौंदर्य विद्युत रेखा के समान है। दामिने अस वह मांग सुहाई, केस घमंड घटा जस छाई, उसका ललाट पूर्णिमा के चंद्र से अधिक ज्योतिर्मय है। ललाट पर शोभित किनारी की झलक चंद्रमा में दामिनी के प्रवेश के समान अनुपम सौंदर्य उत्पन्न करती है। उसकी ललाट ज्योति के सम्मुख चंद्रमा फीका पड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, जबकि उसका ललाट पूर्णतः निष्कलंक है। अब ललाट बरनौ सुखकारी, राका ससितासो उजियारी, और तहां से झलक किनारी देखा, जस ससी मह दामिन परवेसा। चंद ललाट न सो है पूरन ज्योत अपार, वह कलंक निकलंक यही, वह षट बुद्धि लही सार। जुलेखा का नेत्र सौंदर्य देखते ही नायक बेचैन हो उठता है। उसका कटाक्ष हृदय में घाव करने वाला साबित होता है। उसके नेत्रों में श्वेतता, श्यामता और अरुणाभा का मिला जुला रूप ऐसा लगता है जैसे विष, अमृत और मधु को एक साथ घोल दिया गया हो। उसके नेत्र सूर्य की आभा सदृश लुभाने वाले हैं, जिसे देखने वाले नेत्र कमल के समान और अरुण आभा से भर जाते हैं। नैन देख मन होए बेहाला, जासु कटाक्ष ये महसाला, सेत साम और अरुण सुहावा, बिख अमिरित मधु घोर दिखावा, अंबुज बरन दिधिक अरुणाई, भान बरन होए गयो लुभाई। पृष्ठ 42। उसके दोनों कान मोतियों से भरे दो सीप के समान हैं। दो सर्वन दुई सीप सुहाए, मोती भरा सदा दिख रहा है। नासिका चंपा की कली सदृश है, जो देखने वाले के मन के ऊपर खड़क धार का काम करती है। जस चपै की कली सुहाई, खड़क धार तेही मन बिकसाई। उसके कपोलों का सौंदर्य अवर्णनीय है। संसार में उसके समान सुंदर दूसरा कुछ भी नहीं है। बेसर के साथ उन कपोलों का सौंदर्य देखकर ज्ञान लज्जित हो जाता है, अर्थात देखने वाले की मत विमूढ़ हो जाती है, क्योंकि जुलेखा के समान सुंदर सृष्टि में कुछ भी नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। कवि का कथन है, कमल कपोल न जाई बखाना, कह ससी पर जगता ही समाना, बेसर देख सो ज्ञान लजाए, कहते ही सम जही उपमा लाए। उसका कंठ सुंदर सुभग और अनुपम है, जिसे देखकर स्वर्ण भी लज्जित हो जाता है, मानो वह स्वर्ण को चाक पर चढ़ाकर बनाया गया है। उसकी देह देवताओं का सौंदर्य निचोड़ कर बनाई गई है। गीव सुहावन सुभग अनुपा, जात रूप दरिजाए स्वरूपा, कुंदन चाक चढ़ाए बनाए, देह अदेहिन गार सुहाए। उसके उरोज नारंगी के समान कठोर हैं तथा लाल मणि की दो मूर्तियों के समान शोभित होते हैं। उसकी लाल माँ को देखकर लाल रंग भी लज्जित होता है। वह स्वर्ण वाटिका की क्यारियों में शोभित अमृत फल के समान है। कभी लगता है जुलेखा के रूप सौंदर्य से पराजित होकर कामदेव ने अपने दोनों नगारे उलट कर रख दिए हैं। नारंगी सो उरज कठोरा, और कछु तेहि जाए नजोरा, दो लाल कै मूर्ति साजा, देख सो लाल रंग वह लाजा, कुंदन बागन क्यारी बनाई, दुई अम्बरित फलतहाँ सुहाई, मुरत मनोज देखी कै हारा, निज अवधाय सुरख्यो नगारा। जुलेखा की भुजाओं की शोभा भी अवर्णनीय है, विचित्रित सी लगती है। संपूर्ण शरीर में भुजाओं की स्थिति ऐसी है जैसे पुष्प छत्र में लगे हुए दंड हों, अथवा कामदेव रूपी चित्रकार के द्वारा प्रयुक्त चाक दंड हो। काबरने भुज शोभा कोई, रचा चित्र महचित्रित सोई, और पुहुप छत्र वह दंड सुहावा, काम चितैरे चाक फिरावा। उस बाला का सौंदर्य मुनियों ऋषियों और गंधर्वों को भी मोहित करने वाला है। मुनि गंधर्व ऋषि तालखी मोहा। शेख निसार यूसुफ जुलेखा। जब वह अपनी सखियों से मुस्कराती है तो फूलों की वर्षा होने लगती है और चारों ओर उसकी कांति से उजाला हो जाता है। पृष्ठ 43। जब मुस्काए सखन से गोरी, झर ही फूल और हो ही अजोरी। शेख निसार यूसुफ जुलेखा। उसके अधरों की मुस्कान जीवन दायिनी है, जो मृतक को भी जीवित कर देती है। जो वह अधर मधुर मुस्काई, तो मृतक कहाँ देत जियाई। शेख निसार यूसुफ जुलेखा। जुलेखा के रूप सौंदर्य से संबंधित दूसरा प्रसंग उस समय आता है जब अनेक कष्ट सहने के पश्चात यूसुफ से उसका सौंदर्य संयोग होता है और वह पुनः अपना पूर्व सौंदर्य प्राप्त कर विवाह के लिए सजने लगती है। वह 16 श्रृंगार करती है। लागे षटदस होय सिंगारा। शेख निसार यूसुफ जुलेखा में वह 12 आभूषणों से अपने को सजाती है। 12 अभरण साज बनावा। श्रृंगार करने पर उसका रूप अप्सरा के समान शोभित होता है। उसे देखकर सखियां मोहित हो जाती हैं। कवि की दृष्टि में वह अलख ब्रह्म धन्य है, जिसने उसे ऐसा अनुपम रूप दिया। धन वह अलख रूप जिन दीन्हा। शेख निसार यूसुफ जुलेखा में सौंदर्य वर्णन में अन्य सूफी कवियों की भांति शेख निसार ने नारी रूप में ईश्वर अंश की कल्पना नहीं की है। अप्रस्तुत सौंदर्य से आवृत के कारण उसमें मांसलता और काम उद्दीपता नहीं दिखाई पड़ती है। यूसुफ जुलेखा में पुरुष सौंदर्य का वर्णन अत्यल्प है, यद्यपि यूसुफ का अद्वितीय सौंदर्य ही कथा वस्तु की गतिमयता का आधार है, परंतु कवि ने यूसुफ के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। सर्वप्रथम आदि खंड में कवि ने यूसुफ के जन्म अवसर पर उसके जिस सौंदर्य का उल्लेख किया है, उसे देखकर लगता है कि जैसे विधाता ने संपूर्ण सौंदर्य का दो भाग यूसुफ को दे दिया है और शेष में संपूर्ण संसार की रचना की है। विधाता द्वारा निर्मित वह रूप धन्य है। विध स्वरूप जब उत्पत्ति की हा, दुई अंश यूसुफ कह दीन हा, एक अंश महसब जग पावा, धनी वरूप जो नये बनावा। उस सौंदर्य को कहाँ तक प्रशंसा की जाए। वह रूप जैसे साक्षात विधाता का ही रूप है। तेहि स्वरूप कर कहो बखाना, जेहि विधि नय कै रूप निधाना। शेख निसार यूसुफ जुलेखा में। वह रूप मन को भाने वाला रूप है, वह मन भावन रूप सुहावा। तभी तो जुलेखा स्वप्न में यूसुफ के सौंदर्य पर मोहित हो जाती है। उसका रूप सूर्य के समान तेजोमय है, भान स्वरूप वह आए गए। प्रकृति सौंदर्य।